सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यारज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियो लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ कोई भव्य जीवात्मा अपनी आत्मा का विकास करना प्रारंभ कर देता है, आत्मकल्याण के रास्ते पर आरूढ़ हो जाता है, तो प्रारंभिक दशा में वह आत्मकल्याण के 8 मूल गुणों को धारण कर लेता है। 8 मूल गुणों को धारण करके यात्रा प्रारंभ हो जाती है और यात्रा का जहाँ अंत होता है वहाँ पर भी 8 को प्राप्त करके ही होता है। प्रारंभ भी 8 से और अंत भी 8 से। प्रारंभ जो 8 से होता है वह हमारा अंकुरण स्थान है, अंकुरित होता है धर्म 8 के काल में अंकुरित होता है और वही वृक्ष बन करके जब फल देने लगता है तब उस वृक्ष पर हमारे लिए फल भी 8 ही मिलते हैं। ये ऐसा वृक्ष है 8 से ज़्यादा फल प्राप्त नहीं होते। बीज बोना पड़ता है किंतु फल आपको 8 से 16, 16 से 32,000 इस प्रकार से मिल नहीं सकते। 8 बीज बोया था, 8 फल मिल गए। ये 8 कौन कौन हैं? प्रारंभिक 8 जो मूल गुण हैं वो कौन कौन हैं? यही बीज हैं हमारे सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारणीभूत मूल गुण 8 हैं, यही बीज रूप हैं। इन 8 बीजों को नहीं बोते हैं तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं होता। ये 8 मूल गुण को मानवीयता का बीज कहा है, कुलाचार का बीज कहा है। इस कुलाचार के बीज को सुरक्षित रखना चाहिए। 5 अनुव्रत और 3 मकार त्याग, इन बीजों की सुरक्षित, बीजों का सुरक्षा करना, इनको सुरक्षित रखना क्या कठिन बात है? कठिन बिल्कुल नहीं। सबसे सरल तो यही काम है, 8 मूल गुणों को धारण करना सरल काम है। उससे ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर का विषय हो जाता है सम्यक्तु, जो कि मिथ्यात्व के त्याग के पश्चात प्राप्त होता है। फिर चारित्र, चारित्र उससे ज़्यादा जरा कठिन पड़ता है, प्रतिमाधारी बनना या महाव्रती बनना, ये चारित्र का मार्ग है, जरा कठिन है, पर प्रमाद छोड़े तो बिल्कुल सरल है। प्रमाद करने की आदत हमारी बहुत समय से है ना, वह प्रमाद छूट जाता है तो हम कुछ भी कर सकते। तो यहां पांच स्थूल अनुव्रत जो कि सम्यक दृष्टि जीव के पास होना ही चाहिए, उनका लक्षण बताया है। पेज नंबर 12 पर उनका लक्षण है। स्थूल अहिंसा अनुव्रत, स्थूल अहिंसा का, हिंसा का त्याग। क्या मतलब, इसको थोड़ा, स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल असत्य का त्याग, स्थूल अचौरी का त्याग, स्थूल कुशील का त्याग और स्थूल परिग्रह पाप का त्याग। ये जो स्थूल स्थूल हैं उसको त्याग करना है, और ये दोनों पाप 10 प्रकार के, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग के जो नाम हैं वही अंतरंग के नाम हैं। स्थूल हिंसा इन्हें बाहर में जो जीवों का प्राणघात स्थूल रूप से होता है उसका करना, ये स्थूल पाप है। जैसे चर्म की वस्तुओं का उपयोग करना, रेशम के वस्त्र का उपयोग करना, शिकार खेलना, पांच उदुम्बर फलों को खाना, किस कोटि में आते? बड़ी हिंसा की कोटि में आते, बड़ी हिंसा है। बाहर की बड़ी हिंसा तो ये है, और अंदर की बड़ी हिंसा क्या है? कषाय, अपने परिणाम। इन बाहरी पापों को क्या हम भावों के बिना कर सकते हैं? भाव करके ही करते हैं। ये रेशम के वस्त्र के बिना रहा नहीं जाता, ये भाव है, ये भीतरी पाप है, बड़ा पाप। भावों से विचार करना भीतरी बड़ा पाप है, और बाहर में रेशम वस्त्र का उपयोग करने के लिए ग्रहण करना ये बाहरी पाप है। यदि कोई अपने घर में उस वस्त्र को रखा है और पहनता नहीं, हमको पहनने के भाव होते ही नहीं, फिर रखा क्यों? तो रखने से क्या पाप नहीं लगता? ये बाहरी पाप है, रखना बाहरी पाप, और उसके उपयोग करने के भाव करना अंतरंग पाप। स्थूल स्थूल पाप जो होते हैं वो पांच प्रकार के, वो भावों से भी होते हैं और द्रव्य से भी होते हैं। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। पहन नहीं रहे हैं लेकिन रखे तो हैं, स्वामित्व तो है, वह स्वामित्व तो अंतरंग भाव है ना, तो पाप तो लग ही रहा है। जिसको उपयोग में लाना नहीं, जिसके प्रति हमारा मूर्छा भाव नहीं है, उसको रखना भी नहीं चाहिए, वो दान में दे दे। तो दान में देना ये कुदान कहलाता है, सुदान नहीं, कुदान। उन वस्तुओं को दान में भी देने से मना कर दिया है जो वस्तु महापाप के कारणीभूत हैं, उनको देना भी नहीं चाहिए, न लेना चाहिए न देना चाहिए। आप नहीं पहनेंगे तो दूसरे को दे दिया, तो काय के लिए दे दिया, उसके उपयोग में तो आ जाएगा। मैं तो त्याग कर रहा हूं, मुझे पाप न लगे इसलिए त्याग कर रहा हूं, उसके उपयोग में तो आ जाएगा, उसको दे दिया तो वो पहनेगा क्या? नहीं तो पहनने के लिए अनुमोदना किसकी हो गई? हमारी। तो अनुमोदना से क्या पाप नहीं लगता? लगता है। उसको क्या करना? किंची से काटो और गड्ढे में निकाल करके गड्ढे में ढक दो, किसी के उपयोग में भी नहीं आएगा और पाप भी नहीं लगेगा, ना उनको लगेगा ना हमको पाप लगेगा। हम पाप छोड़ रहे हैं तो दूसरे को पाप में क्यों डालें? वो उसके उपयोग में भी नहीं आना चाहिए और हमारे उपयोग में भी नहीं आना चाहिए। ऐसे पंच पापों का त्याग करने की तरीका होती है, विवेक से त्याग किया जाता है। ऐसा भी नहीं सोचा जाता है कि हम नहीं पहनेंगे तो घर में कोई दूसरा और पहन लेगा, नहीं उसको फेंकना नहीं, पैसा बहुत लग गया है और वो उतना नुकसान हो जाएगा पैसे का। पैसे की तरफ देखोगे क्या? पुण्य की तरफ, धर्म की तरफ देखोगे? कोई भी वस्तु जो स्थूल पाप के कारणीभूत वस्तु घर में रखी हुई है, उसको घर में रखना भी पाप, देना भी पाप, उसका उसके अनुमोदना भी पाप, पाप ही पाप। तो उससे बचने के लिए क्या करें? उनको हटाएं, फेंक दें उसको, दूसरे के उपयोग में न आने लायक बनाए, ऐसी जगह फेंक दें जो दूसरे के काम में भी न आ सके, नहीं तो उठा करके ले जाएगा, कोई उपयोग करेगा। फेंकना भी ऐसा विवेक से फेंकना, उसका उपयोग ही कर न सके। घर में बहुत चूहे हो गए थे, चूहे चूहे परेशान कर रहे थे, ठीक है आपको परेशान कर रहे, तो आपने जाली में पकड़ लिया, उसकी जाली होती, लोग पकड़ करके छोड़ देते। क्यों पकड़ा? तो परेशान ना हो, और घर के सभी चीजों को खा रहे थे, धान खाना, कहीं कपड़े कट करना, ऐसा चल रहा था, इसलिए उनको पकड़ लिया। पकड़ करके कहाँ छोड़ोगे? बिल्ली के सामने? विवेक है, जहां वो सुरक्षित रह सकते हैं वहां ले जाकर के उनको छोड़ दिया, तो वहां पर वो रहने लगते हैं, तो ये तो कार्य कर सकते, लेकिन ये परेशान कर रहे थे ये कह करके, अभी तक हमको इसने परेशान किया है, अब हम इनको बिल्ली के सामने ही छोड़ेंगे, यहां भी न रहे और कहीं दूसरे घर में भी जाकर के परेशानी किसी को न करे, ऐसा ये क्रोध हुआ, हिंसा के भाव आए। तो उन जीवों के प्रति रौद्र भाव, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान धारण करना भी पाप ही। बहुत सारी चीटियां हो गई घर में, परेशान होने लगे आप उनसे, तो उनके ऊपर गुस्सा आया और क्या कर दिया, झाड़ू से जल्दी जल्दी फर 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 इकट्ठा कर दिया, और उसमें कई तो मर गए और कई जो बच गए उनको उठा करके गटर में फेंक दिया, तो पानी था गटर में, वहां जाके मर गए। कुछ तो झाड़ू लगाते समय मर गए और कुछ गटर में पूरे मर गए। या तो ऐसी वस्तु का उपयोग करना जिस वस्तु के माध्यम से वो हमारे लिए परेशान नहीं करते, और ऐसी वस्तु का करना जो वस्तु से वो मरते नहीं, और उन जिन वस्तुओं से वो मरते हैं उन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना। एक लक्ष्मण रेखा आती है, वो चाक आता है, वो चाक तो जहरीला है, मनुष्य भी अगर सूंघ लेगा उसको तो नाक में खुजली लगने चलने लग जाएगी, नाक में जलन पड़ेगी, ऐसी शक्ति उसमें। चींटियां उनको सूंघती सूंघती आ जाती हैं और उन उसका एक भी परमाणु अगर नाक में उसके नाक में चली गई तो मरती तड़पती। तो जिनसे जीव मरते हैं उन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर, उनको रोकने के लिए जिन वस्तुओं से वो चींटियां नहीं मरती उन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जैसे किससे हल्दी डाल दिया, कपूर डाल दिया, अमृत धारा डाल दिया, उससे रेखा खींच लिया और खींचते समय उसके ऊपर ही खींच लिया तो पहले तो उनको या तो किनारे करे या तो उनको निकाल करके अलग करे, फिर बाद में रेखा खींचे और बाद में आने वाली जो चींटियां हैं उस रेखा को उल्लंघन करके आपके तरफ नहीं आएंगी। प्रकार स्थूल हिंसा का त्यागी ध्यान रखता है कि हमें बड़ा पाप न लगे, त्रस जीव की हिंसा का पाप हमें न लगे, ये सोचता है। और ऐसा सोचना, ऐसी प्रवृत्ति रखना, ये आठ मूल गुणों के अंतर्गत आता है। को उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं है, जब खेती करेगा, हल चलाएगा, पानी पिलाएगा तो उसमें भी त्रस जीव का घात होता है, ये उद्योगी हिंसा है। फसल को पानी पिलाएगा तो क्या छान के पिलाएगा, पाइप को कपड़ा लगाकर जीवानी करके नहीं, वो तो उद्योगी हिंसा है, वहां तो मरते ही हैं, उससे तो अपने जीवन को बचाना संभव ही नहीं। किंतु जिसको हम बचा सकते हैं और नहीं बचाते हैं तो वो स्थूल हिंसा है, संकल्पी हिंसा है, उस संकल्पी हिंसा का त्याग हमें अवश्य करना चाहिए। चींटी हो गई है घर में तो उनको बचा सकते कि नहीं? नहीं नहीं, हमारे उद्योगी हिंसा का तो त्याग नहीं है, तो इतनी सी चींटियों को बचाने से क्या होगा, तो उनको नहीं बचाया तो मर गए, ये प्रमाद है। जिन जीवों को हम बचा सकते थे उन जीवों को नहीं बचाया तो वह प्रमाद हुआ, प्रमाद हुआ, ऐसा प्रमाद नहीं करना, ये मूल गुण है। धर्म की यात्रा यहीं से शुरू होती है, आठ से शुरू होकर आठ पर रुकती है। सिद्धों के आठ गुण चाहिए ना आपको, और ये आठ मूल गुण ही भारी पड़ने लग जाए तो सिद्धों के आठ गुण क्या मिलेंगे। ये आठ मूल गुण सरल लगना चाहिए, प्रमाद छोड़े तो सरल है, प्रमाद नहीं छोड़े तो प्रमादी जीव को धर्म ही कठिन है, धर्म एक समस्या है जीवन का, ता नहीं। प्रमाद छोड़कर आगे बढ़ना, उत्साह के साथ आगे बढ़ने से इस आठ से हम उन आठ को प्राप्त कर सकते हैं। कहने से चींटी आ ही गई। मुनि महाराज पिंछी रखते हैं, जो दिखते हैं कम से कम उन जीवों को तो बचाना ही चाहिए, और जो नहीं दिखते हैं उन जीवों को भी बचाने का प्रयत्न चलता है, इसलिए पिंछी रखते हैं। आप लोग झाड़ू रखते हैं, ठीक है, जरा कठोर है और ये बहुत मुलायम है, झाड़ू से भी जीवों को बचाया जा सकता है। हस्त की पिंछी है, झाड़ू को क्या पिंछी नहीं कहना चाहिए, अवश्य कहना चाहिए। जिससे हम जीवों को बचाते हैं ऐसा साधन ही घर में ना हो तो जीव मरेंगे। झाड़ू को आप आदर के साथ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और घर में कैसे किस प्रकार की झाड़ू रखना चाहिए जो बिल्कुल मुलायम हो, चीटी हैं, जो चलते फिरते जीव हैं, उनको लगाने पर उनके प्राणों को धक्का न लगे, इस प्रकार के कोमल झाड़ू को रखा जाता है। आठ मूल गुणों का धारी इस प्रकार की पिंछी रखता है और नहीं रखोगे तो जीव तो मरेंगे ही। घर में अपने सांसारिक व्यवहार प्रवृत्तियों को करते समय बहुत विवेक के साथ करना चाहिए। शक्कर है, धान है, तेल है, घी है, इनको उठाते हैं, रखते हैं, निकालते हैं, ले लेते हैं, लेते रखते समय अगर नीचे गिर गया तो चींटी इकट्ठी होंगी और उनके तरफ कभी ध्यान न जाए तो एक साथ मरेंगे। तो ऐसा असावधानी के कारण से होता है। तो हमारी प्रवृत्ति पहले से ही कैसी रहनी चाहिए, कोई भी वस्तु को लेते समय बिल्कुल सावधानी के साथ लेना चाहिए, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। पानी छान रहे हैं तो बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए, पानी पी रहे हैं तो नहीं गिरना चाहिए, पानी निकाल रहे हैं तो नहीं गिरना चाहिए, ले रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे हैं, सभी कार्यों में सावधानी चाहिए कि नहीं। जीवों को देख देख करके रखना चाहिए, कोई चीज ऊपर होती है, कोई चीज नीचे होती है, तो ऊपर रखते समय देख करके रखना चाहिए, वहां पर जीव जंतु उत्पन्न हुए है क्या नहीं। घर को मलिन नहीं रखना चाहिए, हर एक दिन, दो दिन, तीन दिन में पूरे घर को झाड़ते रहना चाहिए। ऐसा एक लंबा झाड़ू रखा जाए तो ऊपर भी वो मकड़ी है, वो है, लटकती रहती है ना, कुछ ज्यादा समय तक हम ध्यान नहीं दे ऊपर तो उनके जाल बन जाते हैं और वो जाल मान लो रसोई घर में बने हैं और वहां से कोई एक मकड़ी छूट गया और जहां खाना पकाते हैं उसके अंदर आकर के गिर जाएगा और गिरा हुआ आपने नहीं देखा और भोजन में गिरा है, उसके साथ आपने दाल बना लिया, मिक्स कर दिया तो एक मकड़ी के साथ दाल बन गई। और भोजन करते समय अगर भूल चूक होकर के अंदर चली गई तो महारोग होगा। ये भूल कहां से शुरू हो गई कि हमने हर दो तीन दिन में प्रमाद छोड़कर जो सफाई करना चाहिए उसको नहीं किया, इसलिए ये हो गया, अब बीमार पड़ गए, अब पेट में काफी परेशानी है, उसके लिए खर्च करने लगे, लाखों खर्च हुआ, जरा से प्रमाद के लिए लाखों का खर्चा किया, बीमार पड़ गए, इन्फेक्शन हो गया। नहीं, पिंछी रखना ठीक नहीं, कोमल झाड़ू से भी साफ किया जाता है, क्योंकि आप सूक्ष्म हिंसा का त्यागी नहीं है। मुनि महाराज को सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवों को भी बचाना पड़ता है, झाड़ू से भी काम चल सकता है। यदि आप भी पिंछी रखने लग जाएं तो कैसे पहचानेंगे महाराज कौन है इसमें, ये महाराज है कि ये महाराज है। ठीक से तो महाराजों की पहचान होती है ना, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। फिर वस्त्र से हिंसा होती है तो ऐलक के समान एक लंगोटी रखो, नहीं ये उचित नहीं, ये बाहरी ड्रेस है, ये बाहरी एड्रेस है, जिसको जो ड्रेस होना चाहिए उस समय वही ड्रेस उनको होना चाहिए। फूल अहिंसानुव्रत में क्या छोड़ना चाहिए, ये प्रश्न आता है। तो यहां लक्षण लिखा हुआ है, स्थूल हिंसा का त्याग करना, अर्थात चर्म की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना, रेशम के वस्त्र का उपयोग नहीं करना, शिकार नहीं खेलना, इन्हें मजाक के साथ, मजाक के साथ किसी भी जीव के साथ में छेड़ाकानी कर रहे हैं, कुत्ते के साथ मजाक कर रहे हैं और उसकी हिंसा हो रही है, उसको मार मार करके देख रहे हैं, ऐसे मजाक के रूप में करते हैं कि नहीं? ये शिकार खेलने में आएगा, ये आपके ऐसे करते करते मर गया तो शिकार क्यों खेलते हैं लोग? अपनी कला को सीखना, हम कितने अच्छी तरह से बाण छोड़ते हैं, हमारे पास कितनी कला है देखने के लिए, तो अपनी कला के लिए प्राणियों के साथ खिलवाड़ मनोरंजन करना ये शिकार है, मच्छर है, मक्खी है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसको उस तरीके से पकड़ो जिस तरीके से वो सुरक्षित, उसके प्राण सुरक्षित रह सकते, नहीं तो ऐसा हाथ से फट मार रहे हैं, मर गया, नहीं तो नहीं मरा, नहीं तो सुरक्षित है तो छोड़ेंगे, मर गया तो मर गया, तो एक खिलवाड़ हो जाता। को उस तरीके से पकड़ो और बाहर छोड़ो। मच्छर हो गए तो कुछ वस्तुओं के कारण से वो मर भी सकते, जिस टाइप का धुआं किया, जिस धुएं में वो उनके प्राण सुरक्षित नहीं रह सकते, उस प्रकार का धुआं नहीं करना चाहिए। एक धुआं वह है जो उनके प्राणों के लिए घातक नहीं, एक धुआं वह है जो उसके प्राणों के लिए घातक भी है। में कड़कपना होता है, जिस धुएं में जहर होता है, जो श्वासोश्वास के लिए तकलीफ होती है, उसका उपयोग नहीं। ऊद डाल दिया तो मरेंगे नहीं, वो धुएं के कारण से बाहर निकल जाएंगे, परंतु ऐसा कोई जहरीला वस्तु जो उसको मारने का ही धुआं तैयार किया गया है, उसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जागृत हो जाए, नहीं नहीं यूज नहीं करना चाहिए, यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूज करने के लिए नहीं, उससे शिक्षा लेने के लिए। यूज करने के लिए आपके पीछे है ना झाड़ू, और आजकल कितने कोमल कोमल झाड़ू आ रहे हैं। घर में कभी भी दो प्रकार के झाड़ू रखना चाहिए, एक झाड़ू वह जो ऊपर छत पर लगे जीवों को हटाने के लिए और छत को भी स्वच्छ रखने के लिए, वही इम्पोर्टेंट है। नीचे का तो रोजाना करते हैं, ऊपर का बहुत कम लोग सोचते हैं, ऊपर देखते ही नहीं। काई, हाँ खराटा भी रखना पड़ता। काई तो एक इंद्रिय जीव है, वो स्थावर कायिक है, आपको तो स्त्रस काय को बचाना है, स्थावर काय को नहीं बचाना चाहिए ऐसा भी नहीं कह रहे हैं हम, परंतु जिस स्थावर काय को आप बचा ही नहीं पाते और उसको दूर करना पड़ता है तो वो बात अलग है, पर जिस स्थावर काय को बचा सकते हैं बचाना भी चाहिए। जैसा पानी चावी से ज्यादा गिर रहा है तो ध्यान रखा जाता है, टंकी भर गया है फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इन स्थावर कायिक जीवों को बचाया जा सकता है, बचाना चाहिए। टंकी भरते ही बंद कर देना चाहिए मशीन को, स्थावर कायिक जीवों की अनर्थ हिंसा, व्यर्थ हिंसा, अनावश्यक हिंसा नहीं होगी। हिंसा दो प्रकार की है, आवश्यक हिंसा, अनावश्यक हिंसा। आवश्यक हिंसा क्या है? टंकी भर गई, अब टंकी के पानी को पूरी तरह से हम अपने नहाने धोने के काम में लेंगे, ये आवश्यक हिंसा है, इसको तो टाल ही नहीं सकते आप। क्या स्नान बंद करेंगे, क्या कपड़े धोने से बचेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा। तो एक टंकी पानी चाहिए, एक टंकी का पानी आपने उपयोग कर लिया तो ये आवश्यक हिंसा की कोटि में आया। और अनावश्यक क्या? टंकी की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो भर गया, घंटों तक पानी गिरता रहा, फिर बाद में ध्यान दे दिया, फिर जा करके बंद किया, तो ये अनावश्यक हिंसा, ये क्या पाप नहीं लगता? लग रहा है स्थावर का एक जीव की हिंसा का दोष भी लग रहा है, तो इससे पहले बचो। जो काम जितना करना है उतना समय के अनुसार करना चाहिए, और समय का ध्यान नहीं दिया तो जीव हिंसा प्रारंभ हो जाती, अनावश्यक हिंसा प्रारंभ हो जाती। हमें अनावश्यक हिंसा से सर्वप्रथम बचना है। आवश्यक हिंसा में फिर बाद में थोड़ा 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 कम करते जाना। जैसे अज्ञान अवस्था में टंकी के पानी से कपड़े तो धोते थे, लेकिन अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा पानी ढोल करके फेंक करके काम करते थे, वो भी आवश्यक हिंसा थी, लेकिन उसमें अनावश्यक भी रहा। कपड़े को धोने के लिए जितना पानी का उपयोग करना है उतना ही पानी का उपयोग कर लिया, तो उतनी की उतनी हिंसा होती है, ये आवश्यक हिंसा। परंतु अनावश्यक रूप से आपने ढोल दिया, फेंक दिया या रखा हुआ है तो उसको निकाल दिया, तो यह क्या अनावश्यक हिंसा नहीं है? तो इससे पहले बचना है। आवश्यक से तो आप बच ही नहीं सकते, आवश्यक से भी अनावश्यक से भी मुनि महाराज भी नहीं बच पाते। अब जैसे वायु कायिक जीवों की हिंसा है, स्थावर कायिक का भी त्याग है और तृष कायिक का भी त्याग है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये पंच स्थावर कायिक है, और तृष कायिक द्विइंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री है। चलते समय अपन कोशिश करते हैं कि चींटी ना मरे, बचा करके चलते हैं, ये तृष कायिक जीवों को बचाना हुआ। लेकिन पृथ्वी पर तो पैर रखना ही पड़ता है, और पृथ्वी पर पृथ्वी कायिक जीव तो हमेशा रहते हैं, उन जीवों को कहां बचा पाते हैं मुनि महाराज? उसमें भी बचाने का मार्ग बताया है शास्त्र में। जहां पर लोगों का आना जाना निरंतर रहता है वहां पर प्रासुक मार्ग माना जाता है, प्रासुक रास्ते से चलना। लोगों का आवागमन जिस पर से होता है उस पर से ही चलो, मुनि महाराज को कहा, क्योंकि वहां पर वो प्रासुक बन जाता है, पृथ्वी कायिक जीवों से भी प्रासुक है वो, तो वहां से चलते। और जहां से लोग नहीं चलते वहां पर हम चलने लग जाएं तो वहां तृष कायिक भी हो सकते हैं और पृथ्वी कायिक भी हो सकते हैं और जल कायिक भी हो सकते हैं, ऐसा होती। तो क्या करें? तो कदाचित कहीं किसी स्थान से गुजरना पड़ा और लोग आते जाते नहीं थे, और वहां से कोई कुछ दूरी के लिए लांघना पड़ा, उसमें तो पृथ्वी का एक जीव की हिंसा होती है, ये आवश्यक हिंसा। नहीं, वाहन का उपयोग ठीक नहीं है, कपड़ा किसको, कौन से महाराज, मुनि नहीं, गलत है, अविवेक है, बिछाने वाला अविवेक ही है, और चलने वाले भी चले तो अविवेक हो जाएगा। क्या कपड़े के नीचे जीव नहीं रहेंगे, फिर मरेंगे ना आप? अज्ञानी जीव ऐसी भक्ति करते हैं कि उनकी भक्ति निराली रहती है, एकदम निराली। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ एक कपड़ा बिछाया है, नहीं नहीं यहाँ देखो, ऊपर थोड़ा सा एक फुट का बिछाया है, हम उसके ऊपर पांव दे करके जा नहीं सकते, लांग करके जा सकते, पांव नहीं दे सकते, क्योंकि नीचे जीव आकर के बैठे हुए हो सकते। रात को ठंड लग रही थी और वो जा करके वो गरम बैठ गया अंदर, और उस पर अपन ने पांव रखा। नीचे जीव हो ना हो लेकिन पांव रखना नहीं चाहिए, ये हमारा विवेक है। प्रवचन के लिए आते हैं पहले झाड़ू से साफ करके इसको बिछाते हैं क्या देखे बिना बिछाते हैं? हाँ, ये विवेक है। और झाड़ू लगाए बिना बिछा करके उस पर जल्दी जल्दी बैठ जाना, त्रस जीवा जीव की हिंसा का मतलब अनावश्यक रूप से हिंसा ये है। झाड़ू लगाने पर भी कोई अकस्मात कोई जीव आया और वो मर गया तो उस तरफ इतना देखा नहीं जाता। उन जीव होते हुए भी वैसे ही बिछा करके आप बैठ गए वो ठीक नहीं। और जीव ना हो इसके लिए सावधानी रखी जाती है, यहाँ पर चावल न चढ़ाएं, चढ़ाते हैं तो बहुत सावधानी के साथ एक दाना को भी नीचे न गिराते हुए सुरक्षित रूप से चढ़ाना, व्यवस्थित चढ़ाना और व्यवस्थित निकालना, ये सब होता है तो जीवों की हिंसा नहीं होती है, किसी को पाप नहीं लगता। यही तो जैनाचरण है, जैन धर्म का पालन यही तो है ना का? हाँ, तो उसको क्या करना होती है, उसके लिए वो न मरे इस प्रकार की कोई औषधि आई हो तो उसको सूंघने से केवल वो चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसका उपयोग हो सकता है, परंतु मरने लायक औषधियों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, उत्पत्ति का, हाँ, उसकी उत्पत्ति ही ना हो ऐसी सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन तक कोई चीज साफ नहीं किया, झाड़ा नहीं, तो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न होने के बाद उस कुत्त को मतलब कोई औषधि नहीं मिली तो आप मारते भी हैं, मारना पड़ता है कह करके मारते हैं, तो ये प्रमाद के कारण से हुआ, पहले से ध्यान नहीं रखा, सफाई नहीं रखी, इसलिए हो गया। सीमेंटेड दीवाल में ये बहुत कम होते हैं, खटमल वगैरह आजकल होते बहुत कम, लेकिन पहले के जो घर होते थे मिट्टी के, सफेद मिट्टी के घर, उसमें तो इतने जीव के वो साल भर भी नहीं हटते थे, किसी भी मौसम में कितना भी साफ रखो उसको जाते ही नहीं, क्योंकि मिट्टी एक योनि स्थान है, सीमेंट उनका योनि स्थान नहीं बन सकता। अगर बहुत दिन तक आपने दीवाल को साफ नहीं किया तो उसमें जीवों की उत्पत्ति होना शुरू होता है, तो खटमल भी हो सकती। हर साल कलर चेंज होना चाहिए तो सफाई रहती है अगले साल तक। अपने शरीर के कपड़ों को कैसे धोते रोज रोज, वैसे घर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देखो जैन घर है ये, आप लोगों का घर कौन सा घर है? जैन घर। जैन घर का अर्थ होता है अहिंसा का घर। जिस घर में अहिंसा धर्म जीवित है उस घर का नाम जैन घर। और उसी घर में अहिंसा जीवित रह सकती है जो प्रमाद रहित तो लोग हैं और घर को सदा साफ रखते, ध्यान रखते, रसोई घर को, बाहर के घर को, उठना बैठना जहां पर भी रहता है ऐसा। कोई कोई लोग घर को एक साल में एक बार साफ करते हैं जब दिवाली आती है, दशहरे में, हाँ दशहरे में, दशहरे में घर की सफाई के लिए। एक दिन में तो सब कुछ हो सकता है और उसको साल भर में एक बार करना, तो एक साल तक मलिनता आएगी कि नहीं? कितनी जालियां जमेंगी ऊपर छत पर। थोड़ा सा आधा घंटा कभी जब खाली रहते हैं उस समय याद आना चाहिए कि घर में ये जालियां लग गई हैं, उसको निकालना चाहिए, साफ रखना चाहिए, नहीं तो बार बार होंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी, बढ़ेगी तो हिंसा भी बढ़ेगी, पाप भी लगेगा। जब खाली रहते हैं तो ये ध्यान में आना चाहिए, हमेशा साफ रहना चाहिए। कार गाड़ी को रोज साफ करते हैं कि नहीं? अंदर कपड़े से पोंछ लेते हैं, घर को भी उतना ही साफ सुथरा रखा जाता है। विशेषकर से कम रसोई घर को तो रोज साफ करना चाहिए। कई लोग सालों में करते हैं रसोई घर को। रसोई घर में सबसे ज्यादा वो जाली वाली लगी रहती है, कितना डेंजर है वो। अगर वो जीव आहार में गिर गया और वो पेट में चला गया तो क्या करोगे? रसोई घर बहुत साफ रखना चाहिए। जहां आप भोजन करते हैं और खाना पकाते हैं वो घर बिल्कुल साफ रोज करना चाहिए। बर्तन साफ करने से पहले रसोई घर को साफ करना चाहिए, फिर बर्तन साफ करना चाहिए। अनिवार्य हिंसा में आ गए, लगता ही है। पाप तो चाहे अनिवार्य रूप से करो तब भी लगता है, अनावश्यक रूप से करो तब भी लगता है। पाप तो लगता ही है, पर बचना किससे पहले? किससे पहले बचना? अनावश्यक पाप से पहले बचना है। आवश्यक पाप से पहले बच नहीं सकते, ये समझ करके क्या अनावश्यक पाप को भी करोगे? कि समय शिखर गए थे और वो तो गाड़ी में बैठना ही पड़ा, वो जैसी हिंसा होती है हिंसा तो होती है, हम बचा ही नहीं सकते। तो क्या झाड़ू लगाते समय भी मारते हुए झाड़ू लगाएंगे? अनावश्यक हिंसा इसको पहले करना चाहिए। जो कर सकते हैं, जहां बचाया जा सकता है उसको पहले बचाना चाहिए। अब यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी से कर रहे हैं, हिंसा तो होती है, नहीं होता ऐसा नहीं? यहां से वहां तक गए, नहीं हम तीर्थ यात्रा कर रहे थे इसलिए हमको क्यों पाप लगेगा, ऐसा? तो वो जीव भी पूछते हैं, तुमको किसने कहा था तीर्थ यात्रा करने के लिए? क्या हम मरते हैं आपको मालूम नहीं था? और हम मर गए हैं तो क्या तुम्हारे लिए पाप नहीं लगता? लगता है। कहीं भी जाओ, किसी भी काम को करो, एक मंदिर भी बनते हैं तो भी पाप लगता है। लगेगा? किसको लगेगा? और उन जीवों से कहो, हम तो धर्म के लिए काम कर रहे थे, हमको क्यों पाप लग रहा है? नहीं, धर्म के लिए पाप करो या संसार के लिए पाप करो, पाप तो बराबर लगता है। नहीं, वो तो धर्म कार्य करते समय मरे थे, जल का एक जीव, पृथ्वी का एक जीव, त्रस का एक जीव, वो तो धर्म कार्य, हमारा पाप करने का भाव नहीं था, हमको तो धर्म से मतलब था। तो मूर्ति भी बनाई तो पाषाण से बनाई, उसमें भी हिंसा हुई है, तो शिल्पी को पाप नहीं लगा होगा? नहीं लगा, जीव नहीं मरे थे। जब भगवान को बनाते हैं तो जीव नहीं मरते, और जो घर के लिए पत्थर निकालते हैं तो जीव मरते हैं, ऐसा कुछ है क्या? प्राणों का घात तो होता ही है ना, और वो मरण के काल में जो प्राण पीड़ा के कारण से दुख से मरते हैं उस समय तड़पते हैं ना, ये पाप किसको? चाहे आप धर्म का कार्य करो चाहे नहीं करो, पाप तो स्वयं को ही आता है, तो उसको भी नहीं करे क्या? कौन कह रहा है करो? कुछ ना करना यही करना है, और वो होता नहीं इसलिए मंदिर बांध रहे हैं। मुनि महाराज लोग मंदिर बांधते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं, पत्थर भी नहीं, और खोदने के लिए साधन भी नहीं। इन साधनों को मुनि महाराज ने क्यों त्याग दिया? के कारण से। धर्म के कार्य करेंगे तो भी हिंसा है, और धर्म के कार्य करते समय मंदिर वगैरह बांधते समय अगर हिंसा नहीं होती है, पाप नहीं लगता है ऐसा कहते, तो तो मुनि महाराज को करने में क्या दिक्कत है? मुनि महाराज अभिषेक करें, अभिषेक करने में भी हिंसा है, क्योंकि जल का एक जीव जीव है कि नहीं, का उपयोग होगा, उनकी विराधना होगी, इसलिए जल का उपयोग नहीं कर सकते। ये अनावश्यक हिंसा है। मुनि महाराज को भगवान की पूजा भक्ति इत्यादि भाव से ही है, द्रव्य से कुछ भी नहीं। महाराज क्यों अभिषेक न करे कलश को लेकर के? पूज्य बन गए हैं, पूजक नहीं। पर भक्ति तो करते हैं, हाँ भक्ति करते हैं अपने कर्म निर्जरा के लिए, भगवान के अपने से जो बड़े हैं उनके गुणगान करने से हमारे पास गुणों का आवागमन होता है, तो अपन भक्ति करते हैं। भक्ति के साथ साथ यदि हम वो भी करने लग जाएं, अभिषेक वगैरह, गलत होगा, ये अनावश्यक है। समस्त वस्तुओं का त्याग ही हो गया तो द्रव्य पूजन कहाँ है? आप जिन द्रव्यों को जुटा करके पूजन करते हैं, मुनि महाराज नहीं कर सकते। मुनि महाराज भी द्रव्य पूजन करते हैं, लेकिन उनका द्रव्य पूजन अलग है। द्रव्य पूजन का क्या तात्पर्य है? द्रव्य को जुटा करके पूजन करना, कौन सा द्रव्य? पर द्रव्य। पूजा किसकी? पर द्रव्य की पूजा। भगवान पर द्रव्य है ना, पर द्रव्य की पूजा पर द्रव्य से करना, तो पर द्रव्य से मुनि महाराज भी कर रहे हैं और श्रावक भी कर रहा है। मुनि महाराज के पास जो पर द्रव्य है वो ये दो हाथ हैं, ये स्वद्रव्य नहीं है, पर द्रव्य है हाथ, पुद्गल है कि नहीं? आत्मा स्वद्रव्य और पुद्गल पर द्रव्य। पर द्रव्य का आलंबन लेकर के द्रव्य पूजन से ही पूजा कर रहे हैं ना, पर द्रव्य काम में आ रहा है ना, ये द्रव्य पूजन है। महाराज का द्रव्य पूजन ये है, निश्चय से तो भावों से पूजन करना, ये निश्चय पूजा। व्यवहार से तो द्रव्य का आलंबन लेकर के, वस्तुओं का आलंबन लेकर के पूजन करना, ये व्यवहार पूजा। तो हम व्यवहार पूजा भी करते हैं और निश्चय पूजा भी करते हैं। भाव निश्चयात्मक होते, जो आत्मा के होते हैं, आत्मा से संबंधित जो पूजा है वो भाव पूजा, निश्चय पूजा। और जो पर के आलंबन से किया जाता है, वस्तु के आलंबन से, वो व्यवहार पूजा, द्रव्य पूजा, बाह्य पूजा, बाह्य पूजा, व्यवहार पूजा। ऐसा हाथ जोड़ दिया, द्रव्य पूजन के लिए हम तैयार हो गए। ऐसा मस्तक नवाया, मस्तक को काम में ले लिया हमने, हाथ को काम में ले लिया, पुस्तक में देख देख करके पढ़ने लगे, पुस्तक को काम में ले लिया, द्रव्य पूजा है। द्रव्य के द्वारा पूजन करना द्रव्य पूजा है, भाव के द्वारा पूजन करना भाव पूजा है। द्रव्य के द्वारा तो आप भी करते हैं और मुनि महाराज भी करते हैं। आपके द्रव्य अलग हैं, आपके डबल द्रव्य हैं, हमारा तो सिंगल द्रव्य। हमारे पास दो हाथ हैं, मस्तक है, बस हो गया, सिंगल द्रव्य को यूज किया। और आप डबल द्रव्य, मस्तक भी, हाथ भी, जल भी, चावल भी, श्रीफल भी, बादाम भी, खारिक भी, डबल डबल द्रव्यों का उपयोग करते हुए भी मोक्ष नहीं जा रहे आप लोग, और मुनि महाराज सिंगल द्रव्य उपयोग करके मोक्ष जा रहे हैं। मोक्ष जाने वाले जीव को पूजन जरूरी नहीं, सब कुछ छोड़ देना और कुछ भी नहीं करना, ये करना, ये मोक्ष का कारण है। कुछ नहीं करना, ऐसे बैठना, ये मोक्ष मिलता है, इससे मोक्ष मिलता है। और ये नहीं होता है इसलिए वो करते बेटे, वो भी क्यों कर रहे हैं, तो मन दौड़ता है, पंचेंद्रिय विषय कषायों में मन दौड़ता है, इसलिए वो द्रव्य जरा जुटा करके ये पूजन करते हुए बैठे हैं, गुणगान कर रहे हैं भगवान का, मन एकाग्र हो रहा है पापों से बचने के लिए, विषय कषायों में मन न जाए, चंचल न हो जाए, बस इतना सा मात्र उसका संबंध है पूजन का, मन की चंचलता को रोकने के लिए, मन की पाप प्रवृत्ति को रोकने के लिए, और यहीं पर रोकने के लिए कर रहे हैं डबल द्रव्य पूजन, हाथ का भी उपयोग किया श्रावक, और आठ प्रकार के, ये आठ प्रकार के द्रव्य क्यों जुटाया, नौ प्रकार के क्यों नहीं, दस प्रकार के क्यों नहीं, या एक ही प्रकार का क्यों नहीं, तो उन्होंने सोचा, विचार किया कि देखते हैं आठ ही ठीक है, क्यों, क्योंकि वो महाराज आठ कर्मों को नाश करके मोक्ष गए, मुझे भी आठ कर्म ही नाश करना है, तो एक एक कर्म के लिए एक एक द्रव्य जुटाता हूं, अष्ट द्रव्य रखा, एक एक काम कर्म को नाश करने के लिए एक एक द्रव्य रखा, चुन लिया, वास्तव में यही ध्येय है उसमें, कर्म कितने हैं आठ है। और पूजन किस लिए, कर्मों को नाश के लिए, तो कर्म कितने हैं आठ, आठों कर्मों को नाश करने के लिए आठ द्रव्य जुटाया, ये नई बात मिल गई आपको, ये मालूम नहीं था आठ कर्मों को नष्ट करने के लिए आठ द्रव्य जुटाए, कर्म दस हैं क्या, दस होते तो दस जुटाते, तो दसविध अर्चन ऐसा कहलाता पूजन का नाम, अभी तो अष्टविध अर्चन, आठ प्रकार से पूजन करना, खाली हाथ कहाँ जा रहे हैं आप, यदि पहुंच भी गए खाली हाथ, तो हाथ तो हैं, हाथ में आत्मा के हाथ में हाथ तो हैं, इन द्रव्य को तो जुटाओगे ना, तो ये क्या कम है, क्या कम नहीं है, हाँ आपने एक्स्ट्रा सोच लिया ये बात अलग है कि एक द्रव्य हाथ में भी होना चाहिए, उसका क्या प्रयोजन है, आठ नहीं, आठ भी जुटा लो तो कर्म के नाश के लिए, एक भी जुटा लो तो कर्म के नाश के लिए, चलो पहले एक को ही जुटा लो, आठ की क्या जरूरत है, एक को ही जुटा लो, और जुटाते तो एक को, लेकिन एक को छोड़ते नहीं, एक पहला मोहनी कर्म, एक ही तो है वो मोहनी कर्म, मोहनी कर्म के नाश से सारे कर्म नष्ट हो सकते हैं, ये है कि नहीं, तो कम से कम हे भगवान मेरा मोहनी कर्म नष्ट हो इसलिए एक ही द्रव्य लाया हूं, तो भगवान मना करते हैं क्या, चलो साथ पुनः ले आओ, ऐसे कैसे लौटाएंगे नहीं, भगवान एक लाए हो तो एक स्वीकार, दो लाए हो तो दो स्वीकार, या नहीं भी लाए हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी नहीं लाए हो, हाथ तो लाए दो, ये दो हाथ, और चलते समय दो पांव से चलते हुए आए, पूजन के लिए आ रहे हैं, पूजन के उद्देश्य जिन वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं वो सब द्रव्य ही हैं, आपके शरीर में कितने अंग हैं, आठ अंग, तो आठ अंगों से पूजा हो ही रही, आठ अंगों से पूजा हो रही है, और नमस्कार करते समय साष्टांग नमस्कार कर लिया तो सबसे बड़ी पूजा हो गई, आप द्रव्य पूजन से बच ही नहीं सकते, यदि मंदिर जा रहे हैं तो आठ अंगों से आप पूजन करते ही हैं, बाहरी द्रव्यों को कुछ भी नहीं लाए तो भी आपके पास शरीर नामक एक द्रव्य है ही, इसके आठ अंग हैं, ये अंग अंग पूजन में मग्न हो जाए तो ये भी अष्टविध अर्चन ही है, आपने बाहरी आठ द्रव्यों को जल गंध आदि इन द्रव्यों को क्यों उपयोग किया, आठ कर्मों के नाश के, क्या अपने पास आठ अंग नहीं थे, हम मस्तक को नवा सकते थे, दो हाथों को जोड़ सकते थे, पाँव से चल करके आ सकते थे। भगवान की परमात्मा की पूजा के लिए पाँव से चल करके आए, उपयोग में आए गए वो। लेकिन आपकी भावना ये हो गई कि आठ कर्मों को तो नाश करना है, तो ऐसा करने से भी आठ कर्मों का नाश नहीं होता, ऐसा करना भी बंद करके ऐसा बैठो तो आठ कर्मों का नाश होता। ध्यान में बैठो, और ध्यान में क्या करता है जीव? कुछ भी नहीं करता, यही करता ध्यान में, कुछ भी नहीं करता यही करता है ध्यान में, ऐसा भी नहीं करता, ऐसा भी नहीं करता। भक्त और भगवान के बीच में अंतर नहीं रहता ध्यान अवस्था में। भगवान के समान अपने ज्ञान की स्थिति को बना लेता है। कैसा बना लेता है? मैं भी भगवान के ज्ञान के समान हूँ। भगवान का ज्ञान जैसे पदार्थों को जान रहा है राग द्वेष से मुक्त होकर, वैसा मैं भी राग द्वेष से मुक्त होकर के ही मेरा ध्यान में स्थित यह ज्ञान राग द्वेष से रहित होकर के समस्त पदार्थों को निहार रहा है। न उसमें राग बुद्धि, न ग्रहण बुद्धि, न द्वेष बुद्धि, कुछ भी नहीं। देख रहा है, जान रहा है, देख रहा है, जान रहा है। तो आपके ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में कोई अंतर नहीं, दोनों वितराग। और उसी वितरागता को पाने के लिए पूजा है, और इस पूजा के लिए सही असली पूजा तो ध्यान है। उस पूजा के लिए ध्यान की पूजा चाहिए, तो आठ कर्म ऑटोमेटिक नष्ट होते हैं। ध्यान से आठ कर्म नष्ट होते हैं या द्रव्य चढ़ाने से? तो ये द्रव्य चढ़ाने की पद्धति को भी छोड़ना पड़ेगा ना, रोकना पड़ेगा। चार करो, द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते एक भी कोई व्यक्ति मोक्ष गया है क्या? एक श्रावक बहुत वो था, और वो भाव पूजन में इतने मग्न होता था, तो द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते पता ही नहीं चलता था, दो दो तीन तीन घंटे तक पूजन करता था भगवान की भक्ति में डूब करके, मोक्ष गया क्या पूछते हैं? इतना करता था तो मोक्ष तो गया होगा, नहीं, फिर आठ द्रव्यों को क्यों चढ़ा रहा था? इसलिए चढ़ा रहा था, हे भगवान, आपने ध्यान के माध्यम से आठ कर्मों को नष्ट किया और मेरा मन चंचल है, ध्यान में टिकता नहीं, वही ध्यान मैं पाना चाहता हूँ, वही ध्यान, वैसा ही ध्यान मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे से हो नहीं रहा है। वो ध्यान असली पूजा है, वो ध्यान की पूजा अंतर मुहूर्त में मुहूर्त भी कर लेता हूँ तो सारे अष्टकर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ? पहले मैं अभ्यास कर रहा हूँ उसी असली पूजा को करने के लिए। ये आठ द्रव्य यहाँ उपयोग करके मन को विषयों में जाने से रोकने का पहला अभ्यास कर रहा हूँ मैं, पहला धर्म ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ, फिर इसके बाद तो शुक्ल ध्यान पर जाऊँगा ही। धर्म ध्यान में मेरा मन अगर एकाग्र हो गया, चित्त एकाग्र हो गया, तो शुक्ल ध्यान को भी आज न कल करेगा ही। मैं मन को समेट रहा हूँ, जो आर्त रौद्र ध्यान में जा बार बार जा रहा है वहां से समेट कर मैं धर्म ध्यान में केंद्रित कर रहा हूँ। और आपकी पूजा करते समय जब मैं द्रव्य चढ़ाता हूँ तो या तो इस द्रव्य में अटकता है, या तो आपके गुणों के चिंतन में अटकता है। बस गुणों का चिंतन और द्रव्य, गुणों का चिंतन और द्रव्य, इसका ही चिंतन करते करते मेरा एक घंटा व्यतीत होता है। तो धर्म ध्यान में एक घंटे के लिए मेरा मन स्थिर हो गया और ये सफलता मुझे मिल गई। धर्म ध्यान करने की कला आए बिना आर्त रौद्र ध्यान से बच नहीं सकते, और धर्म ध्यान करने की कला आए बिना शुक्ल ध्यान नहीं कर सकते, ऐसी परंपरा है। रौद्र ध्यान आर्त ध्यान से मन को छुटकारा दिलाने के लिए धर्म ध्यान का आलंबन ले लिया और उसमें आपने द्रव्य जुटा लिया। अगर किसी दिन आपने द्रव्य नहीं भी जुटाया तो भी धर्म ध्यान में स्थिर होना चाहिए ना, मन हुआ कि नहीं हुआ उस दिन ये देखना चाहिए। किसी दिन द्रव्य नहीं मिले, प्राप्त नहीं हुए, उपलब्ध नहीं हुए और आप मंदिर गए, भगवान के समक्ष बैठ करके पूजा भक्ति की, उस दिन द्रव्य नहीं थे, तो द्रव्य नहीं थे तो क्या बहुत बड़ा अपराध हो गया कि भगवान के दरबार में मैं गया और द्रव्य के बिना गया, मैं अपराधी, भगवान क्या कहेंगे, ऐसा सोचोगे? नहीं, भगवान कुछ नहीं, भगवान ये नहीं देखते आप द्रव्य सहित आ रहे हैं कि द्रव्य रहित आ रहे हैं। भगवान को तुम्हारी पूजा से कोई मतलब ही नहीं, वो तो वीतरागी है, अपने में मग्न है। भगवान की पूजा से हमें मतलब है, पर हम जो पूजन कर रहे हैं भगवान को कुछ भी उससे स्वार्थ नहीं। हम तो भगवान से गुणों को पाने के लिए, एक आदर्श सामने रहे गुणों की मूर्ति और मेरा मन उन गुणों में लग जाए, इसलिए गए हम, अपने लिए गए, अपने मन को, मन के मैल को दूर करने के लिए गए। और आप भगवान के पास गए हैं तो भगवान खुश हैं ऐसा भी नहीं, और आज के दिन नहीं आए तो नाराज हैं ऐसा भी नहीं, और आप बहुत द्रव्य लाए हैं, आठो द्रव्य लाए हैं इसकी प्रसन्नता भी नहीं, और आज एक ही द्रव्य लाए हैं इससे कोई मतलब भी नहीं। भगवान को आपकी पूजा और पूजा की क्रिया से, आपके अनुष्ठान से कोई मतलब नहीं, पर भगवान से आपको मतलब है, इसलिए मंदिर गए और हाथ जोड़ करके भगवान से कह रहे हैं, भगवान आप जैसे मैं बनूं, और मैं बनूं इसलिए मैं अपने मन को रोकने के लिए ये सब लाया हूं, आठ द्रव्य, और ये चढ़ा चढ़ा करके एक घंटा मैं धर्म ध्यान में अभ्यस्त हो रहा हूं, मन को स्थिर करने का प्रयत्न कर रहा हूं, और मेरा मन स्थिर हो गया तो एक घंटा पाप से बच गया। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, पाप के बंध से बचकर एक घंटे तक पुण्य का बंध किया और धर्म ध्यान में तल्लीन रहा। तो मंदिर में जाकर के अगर धर्म ध्यान हुआ तो पूजन की सफलता आपको मिल गई, अन्यथा भगवान भी व्यर्थ और ये द्रव्य भी व्यर्थ और जाना भी व्यर्थ, टाइम भी व्यर्थ। मंदिर जाने के बाद भी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, मन के संकल्प विकल्प, संसार की बातें रुकी नहीं तो सब व्यर्थ। अहिंसानुव्रत, स्थूल सत्यानुव्रत, ऐसा असत्य वचन नहीं बोलना जिससे दूसरों का जीवन खतरे में पड़ जाए, ऐसा असत्य वचन भी नहीं बोलना और ऐसा सत्य वचन भी नहीं बोलना जिससे जीव संकट में पड़ते, ऐसा सत्य भी असत्य, आपने सत्य ही बोला और वो उनका जीवन खतरे में पड़ गया। सत्य बोलने से उसको प्राणघात के संकट आ सकते हैं, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। दोनों बातें, सत्य भी हिंसा है और असत्य भी हिंसा है, हिंसा के कारणीभूत सत्य असत्य दोनों हिंसा है, और अहिंसा के कारणीभूत सत्य और असत्य दोनों धर्म है। क्या करना चाहिए, तो कल तक चिंतन कर लेना, उत्तर मिलेगा। क्या करना चाहिए, उत्तर अवश्य मिलेगा, चिंतन करने से मिलेगा। क्या रास्ता निकल सकता है, टाइम हो गया।